प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार दे चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने कार्यों को करते हुए परमेश्वर की निकटता में रहकर आनंदित हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अवश्य ही अपने आत्मिक जीवन में आशीष प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और करुणा के लिए। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से हर एक को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं, निश्चित रूप से हम इसे प्रत्येक के आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी हो सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, जो अपने जीवन से निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के ऐसी परिस्थिति में हैं जहां उनकी उम्मीद समाप्त हो चुकी है। होने दे प्रभु, वे आप पर भरोसा और विश्वास कर सकें, उनके जीवन में आप अपनी शांति प्रदान करें, आज के वचन से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा, जहां पर पौलुस ने हमें इस बात के बारे में स्मरण दिलाया कि हम मृतक शरीर हैं और हम मरे हुए हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से हमसे बातचीत कर हमें जीवन देना चाहता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक प्रसिद्ध न्यायाधीश कभी प्रचार करता था, आज के जीवित प्राणियों में लाखों हैं जो कभी नहीं मरेंगे, उसके पीछे पीछे एक महान प्रचारक प्रचार करता चलता था, आज के जीवित प्राणियों में लाखों हैं जो मरे हुए हैं। वह न्यायाधीश की तुलना में सही था, लाखों करोड़ों मनुष्य अपराध और पाप में मरे हुए हैं। एक वृद्ध पुरुष से पूछा गया कि कब्रिस्तान क्या है, उसने कहा कब्रिस्तान वह स्थान है जहां मृतक रहते हैं। आज के संसार की यही परिभाषा है, अपराध वह है जो आदम ने किया था, उसने परमेश्वर की सीमा पार की थी। पाप का अर्थ है लक्ष्य से चूक जाना, हम परमेश्वर के मानकों में खरे नहीं उतरते हैं, हमारी यही दशा है, हम अपराधों और पापों में मृतक हैं और शैतान के सामर्थ्य में सक्रिय हैं। यह उद्धार पाने से पूर्व की हमारी छवि है, इस संसार में प्रत्येक उद्धार से रहित मनुष्य एक पुतले की तरह है। जी हाँ, हमारे अतीत का वर्णन मनमोहक नहीं है। हम इस संसार की आत्मा में चल रहे हैं। हम संसार के समाज, सभ्यता और जीवन शैली को अपनाए हुए थे। हम आकाश के राजकुमार के अनुसार चल रहे थे, जो आज्ञा न मानने वालों को शक्ति देता है। यह शैतान है जो मनुष्य की अगुवाई करता है। आज जब विश्वासी संसार से अलग होने की बात करते हैं, तो उनका अभिप्राय दैहिक, संसारिक और अभक्तों से अलग होना होता है। खोए हुए संसार का पाप वास्तव में मानसिक और आत्मिक पाप होता है, और ये मेरे विचार में शारीरिक पाप से बढ़कर हैं। याकूब की पत्री 4:1-4 में लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे वे विचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का कैसा बैरी बनाता है। रविवार को बहुत लोग आराधना में ऐसी पवित्रता से आते हैं जैसे कि वे संसार से अलग हों, और सोमवार के दिन वे इस संसार में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे अन्य संसारिक मनुष्य, और पैसों के पीछे भागने लगते हैं और अपने स्वार्थ में और अपने लालसाओं में उड़ते हैं। याकूब यही तो कह रहा है, विश्वासी को इन सब बातों से मुक्ति मिल गई है, अर्थात उनको जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। यूहन्ना इसी बात को इस प्रकार से कहता है, 1 यूहन्ना 2:15-17 में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरे मित्रों, आज अनेक मनुष्य कहते हैं कि वे घोर पाप में नहीं हैं। वे कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करता, मैं अन्यों की नाई न तो जीवन जीता हूं और न ही वैसा आचरण करता हूं। डॉक्टर कैम्वेल मॉर्गन एक प्रश्न पूछते थे, क्या आप उनकी नाई जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप टीवी पर मनुष्य को पाप करता देखना चाहते हैं? क्योंकि इस प्रकार आप इन कुकर्मों को उनके स्थान में करना चाहते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी मेरे विचार में गणमान्य इसलिए है कि उसका प्रचार ऐसा है। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि प्रभु यीशु ने उड़ाव पुत्र के पापों का उल्लेख नहीं किया है। मैंने ऐसा प्रचार सुना है कि प्रचारक उड़ाव पुत्र को एक रात्रि क्लब से दूसरे रात्रि क्लब, एक मधुशाला से दूसरी मधुशाला, एक वैश्यालय से दूसरे वैश्यालय में ले जाता था। कुछ पवित्र जन ऐसा प्रचार सुनने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे पाप का आनंद ले सकते हैं। यूहन्ना जब कहता है संसार से प्रेम न रखो, तो उसका कहने का अर्थ यही था कि संसार को देखकर भी लालसाओं की पूर्ति न करो। क्या आप संसार से ऐसा प्रेम करते हैं? आप इसके बारे में कैसी अनुभूति करते हैं? मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में समुद्र कभी नहीं देखा था। जब मैं पहली बार मद्रास गया, तब मैंने समुद्र देखा। हम उसे देखने गए और जब लौट रहे थे तो हमारी नाव जो समुद्र के किनारे थी, कभी दूर हो जाती थी और कभी पास। कहने का मतलब है कि हमारी आंखों से ओझल हो जाता था और अंततः हम पाते कि वो विलोप हो गया। मुझे वो अच्छा तो लगा, परंतु मुझे उससे दूर होने का दुख नहीं था। मैंने अपने और अपनी पत्नी से कहा कि इसी प्रकार मुझे आशा है कि मैं संसार के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखूंगा। मेरे विश्वासी मित्रों, क्या आप वास्तव में कलीसिया को उठा ले जाने के लिए मसीह यीशु के आगमन के अभिलाषी हैं? यह एक अति उत्तम चर्चा का विषय है, परंतु मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आप इस संसार को त्यागते समय रोएंगे, क्योंकि आप इसमें ऐसे मग्न हैं? क्या आप अपनी नौकरी में या व्यापार में या घर में या क्लब में या संसारिकता की कलीसिया में मग्न हैं? शिमोन पत्रस ने संसार की ऐसी ही व्याख्या की है, दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बहोर के पुत्र विलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपराध के विषय में उल्लाहना दिया गया है। यहां तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ध्यान दीजिए, यह भटके हुए संसार का चित्रण है। क्या आप परमेश्वर की संतान होकर इस परिदृश्य में फपते हैं या सोते हैं? मसीह यीशु को ग्रहण करने से पूर्व हम आकाश के अधिकार के हाकिम की इच्छा के अनुसार चलते थे, जो शैतान है। वह हमें शक्ति देता था। जी हाँ, हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम जिसके अधीन हो वह हमारा स्वामी होता है। एक विश्वासी को भी चुनाव करना है कि वह किसकी सेवा करेगा। कुछ लोगों के विचार में परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ है सांसारिक वेशभूषा और मनोरंजन का त्याग करना और स्वतंत्रवादी शिक्षाओं से दूर रहना, परंतु यह अलग होना नहीं है। मैं तो यही सुनता हूं, आपका जीवन कड़वाहट, घृणा, स्वार्थ से पूर्ण है तो ऐसी बातें किसी काम की नहीं, क्योंकि यही तो घोर पाप है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। ध्यान दे, पौलुस कहता है हम, अर्थात वह भी इसमें शामिल है। वह भी इसी समूह में अपने को गिनता है। उसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जिनमें हम सब की जीवन शैली अर्थात लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं एवं विचारों में जी रहे थे और सबके समान क्रोध की संतान थे। दुर्भाग्य से विश्वासी उस पुराने स्वभाव में जीवन बिता रहे हैं। वे सांसारिक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन अभक्ति के सिद्धांतों से प्रेरित है और शैतानी बातों के नियंत्रण में है। मेरे मित्रों, मैं एक बार एक विशिष्ट विश्वासी व्यापारी के घर गया। उसने मुझे अपना घर दिखाया और अपने बच्चों की प्रशंसा की तथा अपने मान सम्मान की चर्चा भी की, परंतु प्रभु यीशु के साथ अपने संबंधों की लेश मात्र भी चर्चा नहीं की। वह जीवन जिसमें संसार का सब कुछ हो और प्रभु यीशु ना हो तो उसमें कुछ समस्या अवश्य है। अध्याय 2 के इस भाग में पौलुस कलीसिया और विश्वासियों का वर्णन कर रहा है, जो पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य में से संबंधित है। आप भावी कहने वालों के अनेक विज्ञापन सुनते और देखते हैं, जो आपके सुंदर भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। मुझे अचंभा इस बात पर होता है कि वे स्वयं तो अपनी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं, परंतु अन्यों का भविष्य अवश्य देख सकते हैं कि वह सुंदर होगा। विश्वासियों को ऐसों से या ऐसों के पास नहीं जाना है। हमें तो परमेश्वर ने हमारा भविष्य बता दिया है और साथ ही हमारा वर्तमान और अतीत भी। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 4 से 6 पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यह संयोजक शब्द परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, ध्यान दे, हमें मसीह के साथ जीवित किया। परमेश्वर दया का धनी है, उसने मुझ पर दया की, उसने आप पर दया की। यह पहले तीन पदों की तुलना में गंभीर परिवर्तन लाता है। पहले तीन पद अत्यधिक अंधकारपूर्ण और निराशजनक हैं। मनुष्य पूर्ण विफलता का पुतला है, वह अपने उद्धार में अयोग्य है। परमेश्वर मृत्यु के इस दृश्य में दया के साथ प्रवेश करता है। उसके पास न तो कमी है और न देरी है, उसके पास बहुत है, क्योंकि वह अनंत परमेश्वर है जो दया में असीम है। उसके पास वह सब कुछ है जो मनुष्य को चाहिए। उसके पास वह है जो आपको चाहिए। एकमात्र शर्त यह है कि आप उसमें विश्वास करें। एक गरीब महिला को निमंत्रण दिया गया कि वह एक दल के साथ छुट्टियां मनाने जाए। वे समुद्री तट पर गए। उसने समुद्र कभी नहीं देखा था, अतः वह समुद्र देखते ही रो पड़ी। उसके साथी सोचने लगे कि ऐसे सुंदर वातावरण में वह रो क्यों रही है। उन्होंने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? उसने उत्तर दिया, मैंने पहली बार देखा है कि समुद्र वह है जो पूरा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर दया का सागर है, वहां बहुतायत है। वह अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार प्रदान करता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने का अर्थ क्या है? हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे और अपने पाप को उभर आने में, अर्थात उद्धार पाने में सक्षम नहीं थे। अतः परमेश्वर दृश्य में आया और हम तक पहुंचा, क्योंकि वह अनुग्रहकारी था। उसने ऐसा क्यों किया? इसका कारण हम में नहीं है, उसने स्वयं में इसका कारण देखा। परमेश्वर जब इसराइल को मुक्ति दिलाने उतरा था, तब कारण यह नहीं था कि वे आकर्षक थे, भले थे या उसकी सेवा में थे, कदापि नहीं। वे तो हठीले लोग थे। वे उस समय मूर्ति पूजा करते थे, जंगल में वे सोने के बछड़े की पूजा कर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने कहा था कि उनकी पुकार, उनका रोना उसके कानों तक पहुंचा था। उनके रोने का प्रभाव परमेश्वर पर क्यों पड़ा? क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। वह आपसे भी प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। परंतु यह उसका प्रेम नहीं, उसका अनुग्रह है जिससे हमारा उद्धार होता है। मेरे मित्रों, एक समय था कि युवा वर्ग जीवन से इतना अधिक निराश एवं निरुद्देश्य थे कि वे लगभग सभ्यता त्याग नशे में पड़ गए थे। इन्हें हिप्पी कहते थे। ये लोग प्रायः समुद्री तट पर नंगे पड़े रहते थे। उसके मध्य अनेक युवा विश्वासी सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे। एक समय इन्हीं युवा प्रचारकों में बाइबल अध्ययन करवा रहा था। इनमें मन फिराए हिप्पी भी थे। मैं अब उस स्थिति में हूं कि मनुष्य को उसके बाहरी रूप से ही नहीं आंकता जैसे किसी पुस्तक को। मेरे अध्ययन में कुछ युवा सामने बैठे थे और उनके कपड़े बड़े ही असामान्य थे। उनके बाल भी लंबे थे। पहले तो उन्हें देख मैं चौंका, परंतु उनके हाथों में बाइबल और अभ्यास पुस्तिकाएं थी और आत्मिकता की झीलम थी जो आज कलीसियाओं में भी देखने को नहीं मिलती है। ये युवा जीवन प्रकट कर रहे थे। मेरे प्रियो, उनमें से एक युवक मेरे पास आया। उसकी टोपी पर, कपड़ों पर और यहां तक कि जूतों पर भी प्रेम लिखा हुआ था। मैंने उससे पूछा, तुमने सब जगह प्रेम क्यों लिखा हुआ है? उसने कहा, परमेश्वर प्रेम है। मैंने उससे कहा, यह अति सत्य है। उसने कहा, परमेश्वर का प्रेम हमारे उद्धार करता है। मैंने कहा, इससे मैं सहमत नहीं हूं। परमेश्वर हमें प्रेम के कारण उद्धार नहीं दिलाता है। क्या तुम मुझे ऐसा कोई बाइबल पद दिखा सकते हो? उसने कुछ समय सोचा और कहा कि उसे ध्यान नहीं आ रहा है। उसने तब पूछा, यदि परमेश्वर प्रेम के कारण हमारा उद्धार नहीं करता तो फिर कैसे करता है? मैंने कहा, मैं प्रसन्न हूं कि तुमने यह प्रश्न पूछा। बाइबल कहती है कि हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं, जो हमारा प्रयास नहीं परमेश्वर का वरदान है, हमारे कर्म नहीं कि मनुष्य घमंड करे। परमेश्वर हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्रदान करता है। अब वह युवक अनुग्रह और प्रेम में अंतर जानना चाहता था, अतः मैंने उसे समझाया, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इससे न चुके। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परंतु वह इस प्रेम के कारण रात के अंधेरे में हमें चुपचाप पिछले दरवाजे से स्वर्ग में नहीं ले जाता। परमेश्वर ज्योति है और इस जगत का नैतिक प्रशासक भी है। परमेश्वर न्याय में अचूक है, वह पवित्र है, वह भला है, अर्थात वह गलत काम नहीं कर सकता अपने स्वयं के मानकों के आधार पर। अतः वह हमें केवल प्रेम के कारण बचा नहीं पाएगा, प्रेम ने परमेश्वर को बांध दिया है। वह तो हमारा उद्धार किए बिना भी हमसे प्रेम करता है। मेरे विचार में तुम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 का संदर्भ दोगे, अतः हम इस पद पर ही ध्यान दें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसका उद्धार किया? जी नहीं, वहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर प्रेम के कारण जगत का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि वह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा। तुम और मैं, आप और मैं नष्ट होने वाले थे, हम भटके हुए पापी हैं, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। उसका यह प्रेम हमें स्वर्ग में अनुचित प्रवेश नहीं दिलाता। परमेश्वर को हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोलना था, अतः उसने हमारे पापों का दंड चुकाया है। जी हाँ, अब वह प्रेमी परमेश्वर इस खोए हुए संसार की ओर हाथ बढ़ाकर कह सकता है, यदि तुम मेरे पुत्र में, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान की बलि चढ़ाई, विश्वास करते हो और उसके द्वारा मेरे पास आते हो, तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अतः परमेश्वर अपने प्रेम के कारण नहीं, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार करता है। मेरे मित्रों, स्पष्ट कहूं तो यह और भी अधिक अद्भुत बात है। जब मैं बालक था, छोटा था, तब गलत काम करने पर अपने माता पिता का पक्ष खो देता था, परंतु परमेश्वर मुझसे कभी रुष्ट नहीं होता था, परंतु मैं उसकी सहभागिता से वंचित हो सकता हूं। पाप उसकी सहभागिता से वंचित कराता है, परंतु उसका अनुग्रह मुझ पर बना रहता है। मैं परमेश्वर के आत्मा को दुख पहुंचा सकता हूं, परंतु उसके पास लौट आने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। पहला योना की पत्री 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलूं और देखूं कि मैं चूक गया, तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से धो देता है, अर्थात मुझे धोता रहता है। क्यों? परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण ऐसा करता है। वह अपनी दया और अपने अनुग्रह का धनी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर इस खोए हुए संसार की ओर अपनी बाहें फैलाकर कहता है, तुम मेरी राह के अनुसार मेरे निकट आ सकते हो। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह परमेश्वर का जगत है और वह अपनी इच्छा के अनुसार इसे चलाता है। आपके विचार में आपके पास एक अधिक अच्छा उपाय है, परंतु आपके पास उस उपाय को लागू करने के लिए अपना जगत नहीं है। वह अपने जगत के नियम बनाता है, और आपको उनका पालन करना ही होगा। वह आपसे प्रेम करता है और आप उससे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। आप सूरज को चमकने से रोक नहीं सकते, परंतु उसके प्रकाश से अलग अवश्य हो सकते हैं। पाप परमेश्वर की इच्छा से बाहर है और पाप करके आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं। इस कारण आप परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। यदि आप मसीह के द्वारा उसके निकट आते हैं तो वह आपका उद्धार करेगा और आप उसके प्रेम का अनुभव करेंगे। परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक कब्रिस्तान से उठाया है। हमारी आज की स्थिति यह है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। हमारा भविष्य क्या है? मेरे मित्रों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो निश्चय जानिए कि हमारा भविष्य उज्जवल है। हम उसके साथ होंगे, उसके साथ राज करेंगे। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ या अशांति, बेचैनी या और किसी प्रकार की तंगी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, हम उसके साथ होंगे तो किस बात की तकलीफ होगी? मेरे प्रियो, यदि आज तक आपने इस बात को नहीं जाना है, आपने इस बात को नहीं समझा है कि परमेश्वर दया का धनी है, आज आप समझ लीजिए, आज आप उसे पहचान लीजिए कि वह दया का धनी है और वह आपको भी दया दे सकता है। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप अपने जीवन में इसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। See you.